سورة مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حامیم. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر. گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 3، 1, 2, 3. ان کا عنوان ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. یہ چاروں صفات لکھ لیں: گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑی قدرت والا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں قرآن پاک میں اور اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، لیکن جو دل کی حالت ان آیتوں کو پڑھ کے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، وہ شاید ہی کسی اور موقع پہ ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی وہ صفات پیش کی کہ جو ایک انسان کو خاموش رہنے نہیں دیتی. گناہ کر کے بیٹھا ہوا انسان اللہ کو غافر الذنب سمجھے، توبہ کی نیت کرنے والا شخص اللہ کو قابل توب سمجھے، اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہو کے جینے والا اللہ کو شدید العقاب سمجھے، اور جو اللہ کے خزانوں سے مایوس ہو کے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، وہ اس کو ذی الطول سمجھے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ پورے 99 نیمز کی آپ کو ایکٹیویٹی دے دوں، کہ ہر نام پہ اگر آپ 5-5 منٹ بھی تدبر کریں ترجمے کے ساتھ، معنی اور مفہوم کے ساتھ، یقین کریں یہ دل آپ کا اپنا نہیں رہے گا. ہم پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی صفات پہ توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے. اور آخر میں الیہ المصیر کہہ کے تو انسان کو بتایا کہ جاؤ گے کہاں بچ کے. ساری زندگی تم اس سے دور رہو گے، لیکن ایک دن تم بلائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانیاں کرتے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اس دن ان کی آواز بند ہو جائے گی. جو دنیا میں خوب جھگڑنے والے تھے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں. بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، بس میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. یہ تھی آیت نمبر 4 سے 6، 4 to 6. اس کا عنوان ہے یہاں کے جھگڑنے والے دھوکے میں ہیں. اللہ کی آیتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، جس کو ماننا ہے وہ مان لے، جس کو نہیں ماننا وہ اپنے نہ ماننے کی دلیل دینے کے لیے آیتوں کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں. کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ ارے کوئی نہیں ہے، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتی، یہ ایسی مولویوں کی باتیں، یہ سخت باتیں، دین اتنا سخت تھوڑی ہے، اللہ نعوذ باللہ اتنا تھوڑی ہے مین کہ اس طرح سے کرے اور اس طرح سے کرے. یہ ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑنا، کہ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے بھی بتائی جائے تو ایسے وقت میں بھی انسان یہ سوچے کہ چھوڑو یہ اللہ کی بات نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے نیاز ہونے والی کیفیت ہے. کل ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں جھگڑتے تھے وہ کل وہاں بھی جھگڑنے والے بن گئے. الذین یحملون عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح ہم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیئن رحمتا و علما. اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی، اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی، ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 7 سے 9، 7 سے 9. اس کا عنوان لکھیں گے ایمان لاؤ اور فرشتوں کی دعائیں لو. یہ ہیں وہ آیتیں جس کا تذکرہ شاید میں نے پیچھے آپ سے کیا تھا. हम दुनिया में लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, कोई हज पे जाए तो कहते हैं दुआ करना, और बस दफ़ा ख़ुद दुआ करते नहीं, दूसरों को कहते हैं तुम करो, यानी दुआ भी तुम ही करो। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कुछ काम कर लो, तुम्हें फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी। और कौन से फरिश्ते? जो अल्लाह के अर्श को थामे होंगे। आपको पता है कि फरिश्तों के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं ना, उनका मुकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो फरिश्ते अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, बख्शिश तलब करते हैं, बख्शिश मांगते हैं किन के लिए? ईमान वालों के लिए। है कोई इतना खुशकिस्मत कि फरिश्तों की दुआएं ले? जरा आप सोचिए, इंसान हमारे लिए दुआएं करें तो हमें हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, वो खुद ही गुनाहगार हो, उसको खुद दुआओं की जरूरत हो, लेकिन जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करेंगे उनका क्या हाल होगा? और दुआ क्या करेंगे? फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, पहली बात हाईलाइट कर लें इसको, बस माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने तौबा की। दूसरा काम, वत्तबउ सबीलक, जो तेरे रास्ते पे चल पड़े, छोड़ दिए सारे रास्ते, मन के रास्ते, नफ्स के रास्ते, दुनियादारियों के रास्ते, तेरे रास्ते पे अब चल पड़े। वक़िहिम अज़ाब अल जहीम, और इनको आग के हिसाब से बचा। कितना प्यार आ रहा है इन फरिश्तों पे, हम उनको याद भी ना करें और वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। बस इतनी दुआ नहीं, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिल लती वअतहुम, उस जन्नत में दाखिल कर जिनसे जिनका इनसे तूने वादा किया। क्या सिर्फ इनको? नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़्वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम। इंसान की एक कमजोरी है, उसको कोई नेमत मिलती है ना, या उसको अपने माँ बाप याद आते हैं, या शौहर याद आता है, और शौहर है तो बीवी, और या औलाद, इन तीनों को भी कहा साथ ले जाओ, तुम जन्नत में तनहा ना रहो, इनके बच्चों और इनके घर वालों को भी इनके साथ जन्नत में भेज दे। और वकीहिम सय्यिआत, और इनको बुराइयों से बचा ले, दुनिया में बुराइयों से बचा ले और वहाँ जहन्नुम के अजाबों से बचा ले। कितने लोग हैं जो इस तरह हमारे लिए दुआ करते हो? हम जब ईमान ले आते हैं ना, हम इतने कीमती हो जाते हैं कि हमारी कीमत पूरी दुनिया से बढ़ जाती है। अल्लाह को एक ईमान वाला इतना प्यारा लगता है कि फरिश्तों को लगा दिया उनके लिए दुआएं करने के लिए। फिर जो तौबा न करे और जो सच्चे दिल से ईमान न लाए, फिर उनको ये दुआएं नहीं मिलेंगी। याद रखिए, ये दुआ सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाने वालों के लिए नहीं, जो हकीकत से दिल से मुस्लिम बन जाए, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें फरिश्तों की इन दुआओं का मुस्तहिक कर दे। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन्हें ये आवाज़ दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे बहुत ज्यादा है जो तुम गुस्सा होते थे अपने जी में जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था। काज तुम पे अल्लाह उससे ज्यादा नाराज है, उसको इतना तुम पे गुस्सा है जितना तुमको अल्लाह के हुक्म सुन के आता था। क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है, फिर नमाज, फिर ये करो वो करो। अल्लाह ताला कहते हैं जितना तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आता था उससे ज्यादा आज अल्लाह को तुम पे गुस्सा है। अल्लाह अकबर, जिसके ऊपर रब को गुस्सा आ गया फिर सोचिए वो बचेगा कहाँ। कालू रब्बना, वो कहेंगे हमारे परवरदिगार तूने हमें दो बार मारा और दो बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है? ये अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे, बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो बुजुर्ग का है। ये थी आयत नंबर 10 से 12, 10-12। इसका उनवान है कल तुमको गुस्सा आता था अल्लाह के दीन पर, आज अल्लाह को तुम पे गुस्सा आएगा। इस आयत पे तदब्बुर कीजिएगा, अकेले में बैठे हो ना जब, और ख़ास तौर पे जब कोई दीन की बात बड़ी मुश्किल लगे ना, क्या करें, मुश्किल मुसीबत बोझ परेशानी, उस वक्त आप ये आयतें सोचिएगा कि अल्लाह ना करे कि कल मेरा रब मुझसे नाराज हो तो मैं कहाँ जा सकूंगी। कौन सा रब है? अब वो अपना तारुफ कराता है, हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है। नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, अगरचे काफिर बुरा माने। रफीउद दरजात जुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए, जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे, इनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा न रहेगी। आज किसकी बादशाही है फक्त अल्लाह वाहिदुल कहार की। अल यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत। आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है, और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली कियामत से आगाह कर दीजिए कि जबकि दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे। जालिमों का ना कोई दोस्त होगा ना सिफारशी कि जिसकी बात मानी जाए। आंखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ, और बाएतबारे कुव्वत और ताकत के और बाएतबारे जमीन में अपनी यादगारों के इनसे बहुत ज्यादा थे। बस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेता। ये इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मोजज़े लेकर आए थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह ताला इनको पकड़ लेता था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 13 से 22 तक, 13 to 22। इनका उन्वान लिखेंगे, उस दिन से डराइए जिस दिन कलेजे हलक को आएंगे। हलक किसको कहते हैं? ये थॉट। आप कभी बहुत खौफ में अपने दिल की धड़कन को यहाँ महसूस करते हैं? थक 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 की आवाज़। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन दिल इतने ज़ोर से धड़क रहे होंगे कि लोग अपने हलक तक उसकी आवाज़ सुनेंगे। वो दिन आने वाला है। आज दुनिया में इंसान आज़ाद है, वो समझता है मैं आज आज़ाद हूँ मैं वहाँ भी आज़ाद रहूँगा, लेकिन हकीकत क्या है कि वो बात उस दिन पता चलेगी जो आज उसको समझ नहीं आती। यहाँ आयत नंबर 20 के जो आखिरी दो लफ्ज़ हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, इन्नल्लाह हुवल सुवस्समीउल बसीर। अल्लाह ताला की दो सिफात कुरान पाक में बहुत कसरत से आती हैं, असमी और अलबसीर। थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। असमी का मतलब है कि हर बात को सुनने वाला, और अलबसीर का मतलब है कि हर बात को देखने वाला। सोचिए ज़रा, हम क्या चाहते हैं? नेकी करें तो अल्लाह फौरन देख ले, कोई अच्छी बात कहें तो अल्लाह फौरन सुन ले, और गलत बात करें तो अल्लाह बिल्कुल ना देखे, अल्लाह बिल्कुल ना सुने हमारी हीबतों को, अल्लाह बिल्कुल ना सुने हमारे झगड़ों को और हमारे फसाद को। इन दो लफ्ज़ों में नेक शख्स के लिए रहमत है और बद के लिए बहुत बड़ी डरने की चीज़ है। सोचिएगा इस पे, एक एक्टिविटी करें इस नाम पे। किस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सारी चीज़ें सुन ले, जो मैं बोल रही हूँ वो अल्लाह सुन ले। कुछ भी बोल रहे हो ना, फौरन सोचा करें ये जो सब सुन रहे हैं ना, क्या मैं चाहती हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला भी मेरी ये बातें सुन ले? हम तो दूसरों को कहते हैं अब तुम्हें बताइए, तुम ना आगे किसी को बताना। और अल्लाह के बारे में ज़रा सोचिए, जिसको पता चल जाए ना अल्लाह ने मेरी सुन ली, खशियत आएगी। यकीन करें, एक लफ्ज़ फालतू नहीं बोलेंगे, और किसी को देख के आंख का इशारा तक ना करेंगे अगर इस बात का यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला आंखों की खयानत तक को देखता है। और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिफात पे गौर ही कर लिया जाए ना, तो इंसान की अकल सीधी हो जाती है, ठिकाने पे आ जाती है। ये तो शुक्र है गफलत में जी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गाफिल होके जिए तभी तो मज़ा है। आज दुनिया में मौज और मस्ती है ही उसके लिए कि जो गाफिल होके जी रहा है। जिसको शौर मिल जाता है उसके तो सीने से आहें निकलती हैं कि अल्लाह हमारा बनेगा क्या। अब यहाँ से आगे सूरत के आखिर तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। इसी नाते से सूरत का नाम सूरत अल मोमिन भी है। हम पढ़ेंगे, तरतीब मलहूस रखिएगा, वही चीज़ें जो पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको इसमें एक बड़ा खूबसूरत एंगल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।